हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 29। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति जो कि हमारे हृदय की मलिनता है और आध्यात्मिक ज्ञान को हृदय में प्रवेश करने नहीं देती, उस भौतिक आसक्ति का परित्याग करके और बुद्धि में समस्त भौतिक विचारों का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं दराति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ वितं तं सजीवम्। सत्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु शरत्पति गोपेश गोपीकांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 29। कृपया मेरे साथ श्लोक को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए।
विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्षैव परिदहियते।
फिर से
विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रति हस्ता त्वक्षैव परिदहियते पिसे विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रांसते हस्तात् त्वक्षैव परिदहियते
वन्स लास्ट
विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्षैव परिदहियते
शब्दों का अर्थ देखिए वेपथु कहते हैं शरीर का कंपन यह श्लोक पिछले वाले श्लोक से डायरेक्ट से आ रहा है जिसमें भगवान को अर्जुन ने बताया था ना सीदंती मम गात्राणि मेरे अंग कांप रहे हैं उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अर्जुन कह रहे हैं वेपथुश्च शरीर का कंपन च मना भी शरीरे में यानी शरीर में मेरे आगे रोमहर्षश्च रोमहर्ष मतलब रोमांच हो रहा है जायते उत्पन्न हो रहा है और गांडीव जो था वो अर्जुन के धनुष का नाम था तो अर्जुन का धनुष जो था अर्जुन कह रहा है गांडीवम स्रांसते स्रांसते का मतलब होता है मेरे हाथ से सिरक रहा है मैं अब इतना मेरे अंदर पावर नहीं रह गया कि मैं उस गांडीव को उठाने की क्षमता भी खत्म हो गई अभी गिर रहा है मेरे हाथ से क्यों गिर रहा है क्योंकि उसका शरीर कांप रहा था उस और उसके ना नेत्रों से अश्रु धाराएं बह रही थी उसका मुख भी सूखा जा रहा था और आगे अर्जुन और भी बता रहे हैं त्वक चैवा त्वक किसको बोलते हैं त्वचा माना स्किन अपनी स्किन के विषय में बता रहे हैं त्वक चैवा एवं माना निश्चय ही परिदहियते यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पूरे शरीर में आग लग गई है चलन हो रही है परिदहियते मतलब जल रहा है और मेरे हाथों से मेरा गांडीव धनुष भी गिर रहा है और मुझे ना कंपन हो रहा है मेरे शरीर में कंपन हो रहा है अनुवाद देखिए अर्जुन कह रहे हैं मेरा सारा शरीर कांप रहा है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है अर्जुन अपनी कंडीशन बता रहा है कि भगवान देखो ये जो सामने मेरे खड़े हैं ना जिनसे मुझे युद्ध करना है उनके उनसे युद्ध अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करने से पहले मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई है कि मैं अपना गांडीव भी उठा नहीं सक रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पूरे शरीर में आग लग गई है जलन हो रही है मेरा पूरा शरीर कांप रहा है मैं बहुत दुखी हूँ अर्जुन बहुत दुखी था और इस दुख के कारण वो भगवान की शरण में आया था भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 16 चतुर्वेदा भजन्ति माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम चतुर्विधा का मतलब होता है चार टाइप के लोग मेरा भजन करते हैं और भगवान ने उनको कहा सुकृति नोर्जुना सुकृति नो मना पुण्य आत्मा, यानी कि जब तक आपके पुण्य उदय नहीं हो जाते, जब तक आप पुण्य आत्मा नहीं बन जाते, तब तक आप किसी भी सूरत में भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं ले सकते। भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम, माम माना मेरी। भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, और जान लो कि जो चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आए हैं, वो चाहे किसी भी वजह से आए हों, वो पुण्य आत्मा है। क्योंकि जब तक पुण्य एकत्रित नहीं होते, तब तक आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जा सकते। देखिए वो कौन से चार प्रकार के लोगों के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आर्तो। आर्तो का मतलब होता है दुखी, जिसको संसार में बहुत सारे दुख मिलते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जिसको संसार में बहुत सारे दुख मिलते हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं तो वो पुण्य आत्मा है। और लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दुखी होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करते, बल्कि किसी और मनुष्य की शरण ग्रहण कर देते हैं, किसी पीर पैगंबर की शरण ग्रहण कर देते हैं, किसी देवता की शरण ग्रहण कर लेते हैं, किसी मनुष्य, किसी साधारण व्यक्ति को भगवान समझ के ये सोचते हैं कि यह मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो उसकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं दुख तो सभी के पास आते हैं, लेकिन जो दुख में मेरा स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, समझ लो कि उसके दुख दूर होने वाले हैं। क्योंकि मेरे अलावा और कोई दुख दूर करने वाला है नहीं। यदि कोई कर आपको ऐसा लगता है कि कोई और आपके दुख दूर करेगा, तो सबसे पहली बात कि वो तुम्हारे अपराध है, जो तुम्हें यहाँ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कृष्ण के अलावा किसी और की शरण में जाकर भी मैं सुखी हो सकता हूँ। और यहाँ पर बताया कि सुकृति नो अर्जुना, अर्जुन मेरी शरण केवल पुण्य आत्मा ले सकते हैं। तो भगवान की शरण लेना कितना, आप सबका कितना सौभाग्य है कि डायरेक्ट से भगवान की शरण ली है। और भगवान ने पहला पहला बताया आर्तो। आर्तो का मतलब होता है दुखी। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वो भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ देता, और तड़पता रहेगा जब तक वो संबंध वापस से जुड़ नहीं जाएगा, भले भगवान के अतिरिक्त और किसी से भी अपना संबंध जोड़ के आप सुखी बनने का प्रयास करो, लेकिन वो संभव नहीं है। क्योंकि सुखी केवल कृष्ण कर सकता है। भगवान को कहते हैं सत चित आनंद, केवल ये कृष्ण का नाम है, और कृष्ण के अतिरिक्त सत्य चित और आनंद कोई और हो नहीं सकता। सत्य का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो, और भगवान के अतिरिक्त भगवान ने जो कुछ भी रचा है, एक साइड पर कृष्ण है और कृष्ण की रचना, बाकी सब देवी देवता, बाकी सब पीर पैगंबर, बाकी सब जितने पितृ जो भी कुछ है, वो सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और जो नष्ट हो जाता है वो कभी किसी को सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी नष्ट नहीं होता। तो आत्मा को आनंद प्राप्त कराने वाला जो होगा वो भी अविनाशी होना चाहिए, वो भी इटर्नल होना चाहिए, और वह कृष्ण केवल आपको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। जब तक आप अपने कृष्ण के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ लेते, तब तक संतुष्टि, तब तक आपके दुखों का निवारण संभव नहीं है। जब तक कृष्ण के साथ संबंध जब तक जुड़ा हुआ होता है, तब तक दुख होते नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो एक संबंध जुड़ा होता है उसका माँ के साथ। क्या संबंध होता है? माँ की नाल के साथ उसकी नाल जुड़ी हुई होती है। जब तक यह संबंध, यानी माँ के साथ उसका रिलेशन बना हुआ होता है, उस बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। वो बच्चा गर्भ में खुद ब खुद पौष्टि प्राप्त करता रहता है, खुद ब खुद जो कुछ माँ खाती है उसे मिलता जाता है। वो बड़ा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं गर्मी में गर्मी की, सर्दी में सर्दी की, भूख प्यास अथवा किसी चीज की उसको कोई भी टेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माँ के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ होता है। और जैसे ही वह बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तो डॉक्टर पहला काम क्या करते हैं? उस नाल को काट देते हैं, यानी माँ के साथ उसका संबंध कट जाता है। और जैसे ही यह संबंध कट जाता है उसी क्षण वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध जो माँ के साथ जुड़ा हुआ था, उसका योग जो था वो वियोग में चेंज हो गया। उसी तरह जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़े रखते हैं तब तक हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमारी समस्त संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते। भगवान कहते हैं भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 22, योग क्षेमम वहाम्याम। अगर तुम मेरा भजन करते हो, अगर तुम मेरी शरण में आते हो, तब तो मैं तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करूंगा और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। कृष्ण गारंटी देते हैं। लेकिन जिसका भगवान, जब तक भगवान के साथ हमारा योग होगा तो हमें किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती है, जिस तरह बच्चे को नहीं होती है गर्भ के अंदर। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है, माँ के साथ अपना योग वियोग में उसका चेंज हो जाता है, तब उसको भूख भी लगती है, खाना भी चाहिए, उसको स्वतंत्रता, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। जब तक माँ के साथ संबंध था तब तक उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि माँ उसके योगक्षेम का वहन कर रही थी। जो उसके पास था उसकी रक्षा और जो उसे चाहिए था उसको प्रोवाइड हो रहा था। इसी तरह से जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को बनाए रखते हैं, भगवान के साथ हमारा योग होता है, तब तक भगवान श्री कृष्ण हमारी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जो हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बताया है। वैसे तो भगवान कहते हैं 9.29 में, समोहम सर्वभूतेषु नाउ में द्वेषोति न प्रिया। वैसे तो सारे संसार के लोगों से मेरा एक समान रिश्ता है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी का पक्षपात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर पक्षपात करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.22 में, श्लोक अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 22, बहुत ही उत्तम श्लोक है। भगवान कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यं त्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो मां। अनन्यास मतलब जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, अन्य भाव से नहीं। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त ना कोई देवी देवता, ना कोई पीर, ना कोई समाधि, ना कोई पितृ, और कोई नहीं जिसका अनन्य, अनन्य मतलब कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं जो केवल कृष्ण का चिंतयन्तो मां चिंतन करता है, अर्थात केवल कृष्ण की भक्ति करता है, केवल कृष्ण की शरण लेता है। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां। माम मना भगवान कह रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरा चिंतन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, ये जना मना जो व्यक्ति पर्युपासते। उपासते का मतलब होता है पूजा करना, और यहाँ पर सीधा पूजा करना नहीं लिखा, पर्युपासते लिखा, मना एकदम परफेक्टली। और परफेक्टली पूजा क्या होती है, श्री रूप गोस्वामी अपनी किताब भक्ति रस अमृत सिंधु में बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कि आपके अंदर और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान को संतुष्ट करने की अभिलाषा होनी चाहिए। कितना मूर्ख है मनुष्य जो सदैव खुद को संतुष्ट करने के बारे में सोचता रहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी संतुष्टि कैसे होती है। भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाला। वास्तव में भक्तों, मनुष्य अपनी इंद्रियों को खुद सुख प्रदान करने के लिए इस संसार में तड़पता रहता है और स्ट्रगल करता रहता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम अपनी इंद्रियों को खुश करेंगे ना, तब हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। अपने आप को खुश करने का तरीका इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली कैसे है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को संतुष्ट करते हैं, तो भगवान ये है पर्युपासते। पर्युपासते माना ठीक से पूजा करना, और गलत तरीके से पूजा क्या है कि भगवान की शरण में जाओ, भगवान को बोलो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम ऐसा काम करो कि मेरे घर में सुख और संपत्ति आए, मुझे धन और दौलत मिले और मेरे जो शरीर का कष्ट है ना वो दूर हो जाए। ये होता है गलत तरीके से पूजा करना। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा जो परी उपासक यानी ठीक तरह से पूजा करेगा, जो मुझे खुश करेगा, जो मेरी मुझे खुश करने के लिए प्रयत्न करेगा, तो इनडायरेक्टली मैं उसे खुश करूंगा। ये होता है ऋषिकेश का मतलब, यानी कि भगवान को खुश करके आप जैसे यथा तरो मूल निशेचनेना तृप्यन्ति तत्कंद भुजो पशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वा हणमच्युतेज। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी देने से संपूर्ण वृक्ष स्वतः ही संतुष्ट हो जाता है। कोई कभी, लेकिन अगर कभी कोई पत्ता ये सोचे कि नहीं, वृक्ष की जड़ में सारा पानी जा रहा है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मैं स्वयं से अपना पोषण करूंगा और खुद वृक्ष से कट जाए, खुद को वृक्ष से अलग कर दे और पानी के ट्रप में अपने आप को डाल दे, भले सूर्य प्रकाश और वायु का एकदम संतुलित वातावरण उसको प्राप्त हो, लेकिन यदि वो वृक्ष से कटकर अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा तब वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। उसी तरह यदि हम भगवान, हम सब भगवान के अंश हैं, जैसे पत्ता वृक्ष का अंश होता है ना, उसी तरह से हम सब भगवान के अंश हैं। अब अगर कोई जीव आत्मा ये सोचती है कि भगवान से अलग होकर, भगवान से कटकर, भगवान से दूर जाकर मैं सांसारिक सुख प्राप्त करूंगा, मैं शांति प्राप्त करूंगा, तो वो मूर्खता है उस पत्ते की तरह, जिस वो पत्ता वृक्ष से अलग होकर खुद को संतुष्ट करना चाहता है। यदि पत्ते को संतुष्ट होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वृक्ष की सहायता से संतुष्ट होना पड़ेगा। जब वृक्ष को यथा तरो मूल निषेचनेना, जब वृक्ष की जड़ पे पानी डालते हैं तो संपूर्ण पत्ते स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से जब अच्युतेज भगवान श्री कृष्ण जो कि ऋषिकेश हैं, जो इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हैं, उनको खुश किया जाता है, तो हमारी संपूर्ण, यहाँ पर भगवान ने कहा ये जना परियोपासते, ये ठीक तरीका है, बिल्कुल ठीक तरीका है कि आप मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करोगे, फिर मैं क्या करूंगा, तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषां मतलब उनको, उनको किनको, जो पहले भगवान ने कहा ना अनन्या चिंतयन्तो मम, जो कंटिन्यूस भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और ठीक तरह से पूजा करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्याभियुक्ता मतलब ऐसे लोग जो कि कंटिन्यूस भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वो मैं पूरी करूंगा। क्यों पूरी करूंगा, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चा माँ की कोख में, माँ के गर्भ में माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो माँ खुद ही उसकी ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है ना, सारी उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती। उसी तरह जब हम भगवान के साथ अपने योग को, अपने संबंध को जोड़ते हैं ना, तो ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, और जो हमारे, और आगे बताया क्षेम, क्षेम मतलब सुरक्षा प्रदान करना, जो आपके पास है उसको सुरक्षित रखना, और जो आपके पास नहीं है, जो आपको चाहिए वो सारी आवश्यकताएं पूरी करना, वो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, जब हम अपना रिश्ता, अपना संबंध भगवान से जोड़ते हैं। तो यहाँ पांडव पुत्र अर्जुन ने दुखी होकर भगवान की शरण ली है और भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हुए बता रहे हैं कि अब मेरी ये कंडीशन है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सिरक रहा है और मेरी चमड़ी जल रही है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य बताएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। रोंगटे खड़े होते हैं ना, रोमांच होता है, वो दो टाइप से होते हैं। एक तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय होता है या भौतिक परिस्थितियों में अत्यंत भय उत्पन्न होने पर होता है। यानी कि या तो कभी ऐसा ना आध्यात्मिक प्रमाण परमानंद। आध्यात्मिक परमानंद में क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं शिक्षा अष्टकम में, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदरुत्थया गिरा पुलकर्णिचितं वपुः कदा तवनां ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरी नेत्रों से अश्रु धाराएं बहेंगी, कब रोमांचित होकर मेरा कंठ रुद्ध हो जाएगा, कब गदगदित होकर मेरा सारा शरीर रोमांचित होकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी कि ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये वो समय होता है जब हम भगवान की भक्ति में बहुत आनंद, परम आनंद को प्राप्त करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा दो कंडीशन में होता है, जब एक तो आध्यात्मिक परम आनंद के समय और दूसरा भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होता है, जब हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, बहुत ज्यादा दुख हमें होता है, तब भी ये कंडीशन हो जाती। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता, यानी कि जब हम आध्यात्मिक स्थिति पे होते हैं तो भी ऐसा ही हो रहा होता है, लेकिन उस समय कोई डर नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के लक्षण हैं, वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण। लेकिन अभी जो अर्जुन को ऐसा हो रहा है ना, कैसा हो रहा है, जैसा अर्जुन बता रहे हैं, वे पदुष्टे शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवं संसते हस्ता चैव परिदहियते। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सिरक रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी चमड़ी जल रही है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब इसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि भौतिक भय है अर्थात जीवन की हानि। किसके जीवन की हानि, क्योंकि यहाँ युद्ध में खड़े हैं तो जितने भी उसके सामने हैं वो सब मरेंगे, तो कितने सारे जीवन यहाँ पर नष्ट होने वाले हैं, उनका सोचकर उसको उसकी ये कंडीशन हो रही है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि वह इतना अधीर हो गया है कि इसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सिरक रहा है और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया है कि ये जितने भी उसके शरीर में ये जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं ना, उसका एक ही कारण है, देहात्म बुद्धि। ये बहुत ही सुंदर शब्द है और आज से स्टार्ट हुआ है तो भगवद गीता में ये अंत तक हमें सुनने के लिए मिलेगा। इसके विषय में मैं आपको बता दूं, देहात्म बुद्धि का क्या अर्थ होता है। देह मतलब ये शरीर, आत्म मतलब आत्मा और बुद्धि मतलब अक्कल, ऐसी अक्कल, ऐसी बुद्धि जिसकी वजह से आप शरीर को ही आत्मा मान बैठते हो, यानी कि शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हो, आत्मा को भूल जाते हो। अपने आप को शरीर समझना ये होती है देहात्म बुद्धि, और वो आध्यात्मिक बुद्धि होती है जब हम अपने आप को शरीर नहीं समझते बल्कि आत्मा समझते हैं, वो होता है आत्म साक्षात्कार। तो यहाँ पर क्योंकि अब तक अर्जुन ने शरीर को ही अपना सब कुछ माना, जैसे अभी शरीर के नष्ट होने की वजह से, दूसरों के शरीरों के नष्ट होने की वजह से ही उसकी ये कंडीशन हो रही है ना, तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि जन्य है। वास्तव में भक्तों हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है देहात्म बुद्धि, हमारी सबसे बड़ी ये जो डिस्टर्बेंस, हम इस संसार में जितने भी दुख भोग रहे हैं ना, उसका कारण है देहात्म बुद्धि और कोई कारण नहीं है। वास्तव में इस संसार में कोई दुख है ही नहीं अगर हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं। दुख किसको मिल रहा है, शरीर को दुख मिल रहा है, आत्मा के लिए तो कभी कोई दुख होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नयनाम छिन्नन्ति शस्त्राणी नयनाम दहति पावकः न शयनाम क्लेदयन्ति यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, आत्मा को कभी कोई क्षति पहुंच ही नहीं सकती है, तो फिर इस संसार में आकर हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम अपने आप को आत्मा समझते ही नहीं है। हम शरीर समझते हैं, शरीर क्या खाएगा, फ्यूचर में क्या होगा, अभी आज तो ये हो गया, कल क्या होगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा, कैसे मैं अपनी जिंदगी को निर्वाह करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें जो है वो शरीर के विषय में है। और यही शरीर, ये देहात्म बुद्धि जो है वो हमारे कष्टों का कारण बनती है। यदि हम एक बार ये, और ज्ञान क्या है, ज्ञान ये है कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, और हमारा संबंध केवल कृष्ण से है। हमारा इस संसार में आने का मकसद केवल इस ये है कि हम किसी तरह से भगवान के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लें और इन समस्त दुखों से हम सब आजाद हो जाएं। इन समस्त दुखों से जो देहात्म बुद्धि के कारण हमें दुख मिलते हैं ना, कौन कौन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पैदा होना, मरना, दुखी होना, बूढ़ा होना, तकलीफ, बीमारी, ये सब शरीर को हो रहे हैं। आत्मा के साथ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने भी कष्ट हैं वो सब शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं है। तो ज्ञान क्या है कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हमारा संबंध केवल कृष्ण के साथ है, और कृष्ण को खुश करेंगे तो हम भी स्वतः खुश हो जाएंगे। और कृष्ण को खुश करने का केवल एक सरल उपाय है, सिर्फ एक गाना ही तो गाना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, बस ये महामंत्र का जप करो और तुम्हारे समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें श्रद्धा नहीं है, यदि श्रद्धा होती तो आज हमारे अंदर हमारे पास कोई दुख होता नहीं है। जितनी जितनी श्रद्धा को हम विकसित करेंगे और महामंत्र का जप करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, हमारे समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा। भगवान ने हमें गारंटी दी है, प्रॉमिस किया है, योगक्षेमम वहां में हम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।